कोटि शतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्र्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्ये मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तु भासियत्थं गणहरदेवैः गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुत्तो सुदनान् महोवहिं शिरसा इच्छामि भन्ते सुदभक्तिका उत्सर्गौ तस्सालोचयम् अंगुवंगपैन्यपाहुदयपर्यम सुत्तपरमाणयोगपुभगैचूलियाय चैव सुत्तत्थयधुविधम्मकाह्यमृच्छकालम् अचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखौ कम्मखौ बुहिलाहो सुखैगमनं समाहि मरणं जिनुगुणसम्पत्तिः मज्जुम् अथ प्राणिकस्वाध्यायवेलायाम् आचार्यभक्तिकाय उत्सर्गं करोम्यहम्। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतविभावनापटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दरिसे सुस्साणुग्रहकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेनय तरन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मणमरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्मा विरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रेरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनपटाः प्रीणन्तु मां साधवः। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि भन्ते आयुर्भक्तिका उत्सर्गौ गौ तस्सालोच्यं सम्मणान् सम्मदंसन् सम्मचरितयुक्ताणं पञ्चविहाचाराणमायुर्याणम् आयारादिसुधनाणोदेशयाणं वज्झायाणं तिर्यणुगुणपालनरयाणं सर्वसाहूणं निच्चकालम् अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाव सुवैगमनं समाहि मरणं जिनुगुणसम्पत्तिः मज्जं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अब दूसरा अध्याय। आह सम्यक् दर्शनस्य विषयभावेनोपदिष्टेषु। दूसरे अध्याय में जो भूमिका है उसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, आह सम्यक् दर्शनस्य विषयभावेनोपदिष्टेषु जीवादिश्वादावपन्यस्तस्य जीवस्य किं स्वतत्त्वम् इति उच्यते। कि सम्यक दर्शन के विषय भाव रूप से, माने सम्यक दर्शन किसको विषय करता है, तो उसके विषयों को बतलाते हुए उपदेश किया था। क्या उपदेश किया था? जीवादिशु, जीवादिक पर श्रद्धान करता है सम्यक दर्शन। तो जीवादिकों का जो श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन है। तो आदौ उपन्यस्तस्य, उनमें सबसे पहले जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा, इनमें जीव है। तो जीवस्य किं स्वतत्त्वम् इति उच्यते, तो जीव का अपना तत्व यानी स्वरूप क्या है, इसके लिए कहते हैं औपिशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। ये पांच भाव होते हैं, ये पांच जीव के स्वतत्व है यानी निज भाव है, निजी भाव। औपशमिक, क्षायिक, फिर मिश्र, फिर औदयिक और पारिणामिक, ऐसे पांच भाव हैं। अब इन पांच भावों के उत्तर भेद आगे आएंगे। आत्मनि कर्मण स्वशक्ति है, आत्मा में कर्म की स्वशक्ति के कारणवशात कारणवश अनुद्भूति रूपशम, अथवा ऐसा ले कि आत्मा में कर्म की स्वशक्ति का कारणवश उदय न होना प्रकट न होना, यानी कि कर्मों का उदय रुक जाना किसी कारणवश, उसका नाम उपशम है। यथा उदाहरण दे रहे हैं, कथकादि द्रव्य संबंधाद अंबसी पंकस्य उपशम, जैसे निर्मली वगैरह कुछ ऐसे बीज रहते हैं जिनको पानी में डाल देते हैं तो उनके संबंध से, कतक आदि द्रव्य के संबंध से, फिटकड़ी से भी ये काम हो जाता है, तो उससे अंबसी पानी में पंकस्य उपशम, जो धूल होती है वो नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार किसी कारणवश अपनी आत्मा में जो कर्म है उसकी शक्ति दब जाती है, वो कर्म उदय में नहीं आता, प्रकट नहीं होता, उसका नाम उपशम है। क्षय आत्यंतिकी निवृत्ति ही, क्षय का मतलब होता है आत्यंतिकी निवृत्ति, यानी पूरी तरह से छुटकारा मिल जाए, उसका नाम क्षय है। यथा जिस प्रकार तस्मिन्नेव आम्बसि शुचिभाजनांतर संक्रांते पंकस्यात्यंत अभावः, उसी फिटकरी से जिसकी धूल बैठ गई है उसी पानी को ऊपर से अलग निकाल लो और फिर जो धूल बैठी है उसको अलग फेंक दो, तो अब धूल से उसको पूरी तरह छुटकारा मिल गया, इसका नाम क्षय है। उभयात्म को मिश्र है, उपशम और क्षय जहाँ दोनों रूप परिणाम हो उसको मिश्र कहा है। यथा जिस प्रकार तस्मिन्नेव आम्बसि कतकादि द्रव्य संबंधात पंकस्य क्षीणाक्षीण वृत्ति ही, उदाहरण क्या दिया कि जैसे कोई पानी है उसमें मैल है तो फिर उसमें फिटकरी डाली तो एक ऐसी स्थिति रहती है कि कुछ मैल बैठ जाता है पहले, एक साथ पूरा का पूरा नहीं बैठ रहा, और थोड़ा जो है बारीक वाला वो अभी ऊपर पानी में फैला हुआ है। ये जो क्षीणाक्षीण वृत्ति है, माने कुछ क्षीण है कुछ अक्षीण है, उसका नाम क्षयोपशम है। द्रव्यादि निमित्त वशात कर्मणाम फल प्राप्ति हृदय, द्रव्यादि के निमित्त के प्रभाव से कर्मों के फल की प्राप्ति को उदय कहते हैं। कर्मों के फल की प्राप्ति उदय है। द्रव्य आदि माने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये द्रव्यादि कहलाते हैं, इनके निमित्त के वशात प्रभाव से कर्मों के फल की प्राप्ति को उदय कहा जाता है। द्रव्यात्म लाभ मात्र हेतु का परिणाम है, द्रव्य के आत्मलाभ का हेतु जो होता है, माने द्रव्य का अस्तित्व वैसा का वैसा क्यों रहता है, जीव जीव ही क्यों रहता है, अजीव अजीव ही क्यों रहता है, तो उसका कारण जो होता है वो परिणाम, परिणाम उसको परिणाम कहते हैं। उपशम प्रयोजनमस्येति औपशमिकः, उपशम जिसका उद्देश्य होता है या जिसका प्रयोजन होता है, इस भाव को औपशमिक भाव कहते हैं। एवं क्षायिकः क्षायोपशमिकः औदयिकः पारिणामिकश्च, इसी प्रकार क्षय जिसका प्रयोजन है वो क्षायिक भाव है, क्षयोपशम जिसका प्रयोजन है वो क्षायोपशमिक है, उदय जिसका प्रयोजन है वो औदयिक है, और परिणाम जिसका प्रयोजन है वो पारिणामिक है। तो एते पंच भावा असाधारणा, वे जो ये पांच भाव हैं ये जीवस्य स्वतत्वमिति उच्यते, असाधारण होते हैं इसलिए जीव के स्वतत्व कहलाते हैं। ये पुद्गल आदि द्रव्यों में नहीं होते, ये पांच प्रकार के भाव उपशम क्षय क्षयोपशम, ये पुद्गल आदि द्रव्यों में नहीं पाए जाते इसलिए जीव के स्वतत्व हैं। सम्यक दर्शनस्य प्रकृतत्वात्, यहाँ पर सम्यक दर्शन का प्रकरण होने के कारण तस्य त्रिषु विकल्पेषु, उस सम्यक दर्शन के तीन भेदों में औपशमिक आदौ औपशमिकम आदौ लभ्यते इति तस्य आदौ ग्रहणं क्रियते। औपशमिक सम्यक दर्शन पहली बार जब प्राप्त होता है जीव को तो औपशमिक सम्यक दर्शन ही होता है, इसलिए सूत्र में उसको पहले ग्रहण किया जाता है। सूत्र में देखिए आप औपशमिक क्षायिको भावो, ठीक है ना, तदनंतरं क्षायिक ग्रहण, उसके आगे क्षायिक को ग्रहण किया गया है, तस्य प्रतियोगित्वात् उसका प्रतियोगी होने के कारण, संसारी अपेक्षया द्रव्यदस ततोसंख्ये गुणत्वाच्च, संसारी की अपेक्षा से द्रव्य की अपेक्षा ततोसंख्ये गुणत्वाच्च, मतलब जितने जीव द्रव्यों के पास औपशमिक सम्यक दर्शन होता है उनसे असंख्यात गुणे अधिक जीव द्रव्यों के पास क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। जीव द्रव्यों को कहने के बदला जीवों के पास, जितने जीवों में औपशमिक है उससे असंख्यात गुणे अधिक जीवों के पास क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। प्राप्त भले मनुष्य गति में हो, क्षायिक सम्यक दर्शन की प्रक्रिया मनुष्य पर्याय में होती है, अंत उसका चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन शुरुआत जो होती है क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्त करने की शुरुआत वो यही होती है मनुष्य गति में। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि औपशमिक सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणे अधिक होते हैं। तत उत्तरम मिश्र ग्रहणम, उससे आगे मिश्र को ग्रहण किया क्षायोपशमिक को, तद उभयात्मकत्वात्, ये दोनों रूप होता है उपशम और क्षय दोनों रूप होता है, इसलिए क्षायोपशमिक भाव को मिश्र कहा। और तीसरे नंबर पर बताया क्योंकि दो को बता दिया और फिर दोनों का मिश्रण बताना है तो मिश्रण दो को बताए बिना नहीं बता सकते, इसलिए दो को पहले बता दिया फिर अब मिश्रण बता रहा, क्षायोपशमिक हो गया। ततो संख्य गुणत्वाच, और क्षायिक सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणे क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि होते हैं। मतलब तीन प्रकार के सम्यक दृष्टियों में सबसे कम कौन से हुए? औपशमिक। सबसे अधिक कौन से हुए? क्षायोपशमिक। अब बीच वाले क्षायिक हो गए, लेकिन असंख्यात असंख्यात गुना वाला जो क्रम है वो याद रखना। तेषां सर्वेषां अनंत गुणत्वात्, इन तीनों प्रकार के जो सम्यक दर्शन है इन तीनों भेदों से अनंत गुणे होने के कारण औदयिक और पारिणामिक ग्रहणम अंति क्रियते, औदयिक और पारिणामिक भावों को अंत में अलग से ग्रहण किया गया है। औपशमिक क्षायिक भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिक, इनसे अनंत गुणे होने के कारण औदयिक और पारिणामिक भाव को अंत में ग्रहण किया गया। अत्र द्वंद्व निर्देश कर्तव्य है, कोई शंका कर रहा है कि यहाँ पर द्वंद्व निर्देश करना चाहिए, माने जो समास बनाया है आपने तोड़ तोड़ करके उसके बजाय एक समास बना लेना चाहिए पांच भावों को बताने वाला, द्वंद्व समास यानी पांचों भावों को एक साथ जोड़कर बताना चाहिए। औपशमिक क्षायिक मिश्रौदयिक पारिणामिका जीवस्य स्वतत्वम इति, ऐसा सूत्र देना चाहिए। तो तथा सति, वैसा होने पर द्विह च शब्दों न कर्तव्यो भवति, शंकाकार की शंका है, दो बार जो च शब्द डाला है आपने सूत्र में वो नहीं डालना पड़ेगा, और सूत्र में अगर एक अक्षर कम हो तो जो वैयाकरण होते हैं वो स्वर्ग जैसे सुख का अनुभव करते हैं। क्या सूत्र जितने कम अक्षरों वाला हो उतना ही सूत्रकार को खुशी होती है कि चलो एक अक्षर ये कम हो गया ये कम हो गया, ऐसे छोटे से छोटे सूत्र बनाए जाते हैं कम से कम अक्षरों वाले। अब यहां पर शंकाकार ने शंका किया कि दो बार छह शब्द के बजाय आप एक ही बार रख सकते हो, नैवम शंक्यम, आचार्य कहते हैं कि ऐसी शंका मत करो। क्यों? अन्य गुणापेक्षा मिश्र इति प्रतीयेत, अन्य के गुणों की अपेक्षा से ही मिश्र इसकी प्रतीति की जा सकती है। अब जब तक औपशमिक और क्षायिक को अलग से नहीं बताएंगे तो फिर इन दोनों का मिश्रण कैसे घटित होगा? औपशमिक क्षायिक मिश्र औदयिक ऐसे करके अगर एक सूत्र बनाएंगे तो मिश्र किसका मिश्रण है क्या पता, किसका मिश्रण मानोगे? तो इसलिए उसको अलग से बताना। वाक्य पुनः सति च शब्देन प्रकृतोभय अनुकर्षण कृतो भवति, वाक्य में फिर से वाक्य पुनः सति दोबारा वाक्य बनाने पर च शब्देन च शब्द के द्वारा प्रकृत उभयानुकर्ष कृतो भवति, प्रकरण में जो उभय माने दोनों बातें हैं क्षय और उपशम उसका अनुकर्षण किया जाता है, माने वो सही अर्थ निकल आता है। मिश्र का अर्थ और कोई मिश्रण नहीं है, जीव और अजीव का मिश्रण नहीं है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का मिश्रण नहीं है, और किसी प्रकार का मिश्रण न होकर के वो औपशमिक और क्षायिक इन दो का मिश्रण हो जाता है। तर ही, अब शंकाकार कहता है तब क्षायोपशमिक ग्रहणमेव कर्तव्यमिति चेत, बोले कि तो फिर तो मिश्र के बदले आपको क्षयोपशमिक बोल देना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं ना, नहीं बोलेंगे गौरवात, क्योंकि उसमें सूत्र के अक्षर बढ़ जाएंगे। मिश्र दो अक्षर है, क्षयोपशमिक छह अक्षर है। तुम छह अक्षर क्यों बनाए, सूत्र में छह अक्षर हम नहीं बढ़ा सकते। अभी तो तुम छ हटाने की बात कर रहे थे और क्षयोपशमिक की बात कर रहे हो, तो क्षयोपशमिक में छह अक्षर हो रहे हैं, इसलिए हम सूत्र को नहीं बढ़ाएंगे। मिश्र ग्रहण मध्य क्रियते, मिश्र का ग्रहण मध्य में किया जाता है, उभयापेक्षार्थम, दोनों तरफ अपेक्षा होने के लिए, दोनों तरफ की अपेक्षा को बताने के लिए। भव्यस्य औपशमिक क्षायिको भाव, भव्य के पास औपशमिक और क्षायिक भाव होते हैं। मिश्र पुनरभव्यस्यापि भवति औदयिक पारिणामिकाभ्याम सह भव्यस्यापि इति। और मिश्र जो भाव होता है क्षायोपशमिक, वो अभव्य के पास भी हो सकता है और औदयिक पारिणामिक के साथ भव्य के पास भी हो सकता है, इसलिए दोनों को वहां पर ग्रहण कर लेने के लिए मिश्र को बीच में रख दिया। भावापेक्षया तल्लिंग संख्या प्रसंग, भाव की अपेक्षा से सूत्र में जो लिंग और संख्या का प्रसंग, स्वतत्वस्य इति चेत, स्वतत्वस्य इति चेत, क्या मतलब हुआ इस शंका का? स्वतत्वम ये जो है इसको आपने नपुंसक लिंग में क्यों रखा है, शंका ये है। जबकि सूत्र में जितने विशेषण दिए हैं भाव के, वो सारे विशेषण पुल्लिंग में हैं, औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, औदयिक और पारिणामिक भाव। न, आचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसी शंका मत करो। उपात्त लिंग संख्यात्वात्, क्योंकि स्वतत्व ये जो शब्द है वो उपात्त लिंग और संख्या वाला है। उपात्त लिंग और संख्या मतलब ये नपुंसक लिंग का शब्द है तत्व, और उसकी संख्या भी निश्चित है एक, इसलिए फिर आगे कहते हैं तद भावस तत्वम, उस वह जो भाव है अथवा उसका जो भाव है वो तत्व है। स्वम तत्वम स्वतत्वमिति, अपना तत्व स्वतत्व कहलाता है। तो इस तरह ये टीका की हिंदी हो गई, और इसकी जो व्याख्या है और विस्तार से अगर देखना हो तो फिर राजवार्तिक और अन्य ग्रंथों में। अत्राह, यहाँ पर कोई कहता है तस्य एकस्य आत्मनो ये भावा औपशमिकादयस्ते किम भेदवंत उताभेदा इति, उताभेदा इति, उस एक आत्मा के ये जो औपशमिक आदि पांच भाव हैं क्या और भेदों वाले हैं या फिर इतने ही हैं, अभेद हैं? अत्रोच्यते, यहाँ क्या कहा जाता है, भेदवंत भेदों वाले हैं। ये देवम, यदि ऐसा है तो भेदा उच्चिंताम इति अत आह, तो फिर भेद कहे जाएं, इसलिए यहां से सूत्र कह रहे हैं द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम। अब इनके वृत्ति में अपन देखो क्या कैसा संबंध जोड़ना है। द्व्यादि नाम संख्या शब्दानाम कृत द्वंद्वानाम भेद शब्देन सह, द्वि आदि जो संख्यावाची शब्द हैं और किया गया है द्वंद्व समास जिनका, वे उनका भेद शब्देन सह, भेद शब्द के साथ स्वपदार्थेन्य पदार्थे वा वृत्तिर्वेदितव्या, अपने पदार्थ और अन्य पदार्थों में वृत्ति यानी समास या वृत्ति यानी उसकी प्रवृत्ति वेदितव्य जान लेनी चाहिए। द्वौच नवच अष्टादशच एक विंशतिश्च त्रयश्च द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रयः, ये द्वंद्व समास बना दिया। तेच ते भेदाश्च, और वे जो भेद हैं, तैव भेदा वे ही भेद हैं, येषामिति जिनके, इसलिए वाद वृत्तिर, ऐसी जो वृत्ति यानी ऐसी जो समास की प्रक्रिया है द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथा त्रिभेदा इति, वो ऐसा भेद बन गया, इस भेद को जोड़ करके। यदा जब स्वपदार्थे वृत्तिस, अपने पदार्थ में वृत्ति होती है, तदा औपशमिक आदि नाम भावानाम, तब औपशमिक आदि भावों के द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रयो भेदा इत्यभि संबंध, 2, 9, 28, 21, 2, 9, 28 नहीं 18, फिर 21 और 3, ये भेद ऐसे संबंध जोड़ जाते, लगा लेना चाहिए, किए थे। अर्थवशात विभक्ति परिणाम है इति, क्योंकि प्रयोजनवश विभक्ति में परिणमन परिवर्तन होता है, इसलिए। यदान्य पदार्थे वृत्तिस, जब अन्य पदार्थ में वृत्ति होती तदा, तब निर्दिष्ट विभक्त्यंता, निर्दिष्ट जो विभक्ति है, कही गई जो विभक्ति है, वहां तक, वहां पर्यंत एव अभिसंबध्यन्ते, संबंध्यन्ते, वहीं तक संबंध किया जाता है। औपशमिकादेव भावा, औपशमिकादिक जो भाव है, द्विनाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा इति, वो द्वि नौ अष्टादश आदि ऐसे क्रम लगा लेना है। यथाक्रमम वचनम, यथाक्रम जो शब्द आया है, यथा संख्या प्रतिपत्त्यर्थम, यथा संख्य प्रतिपत्ति जानकारी के लिए है। औपशमी को द्विभेद, अब इसका खुलासा कर रहे हैं सरल तरीके से। ये सब क्या है कि व्याकरण के नियमों से भी बात को सिद्ध करते हैं आचार्य महाराज, माने सूत्र कितना निर्दोष है इस बात की पुष्टि के लिए इतने दुनिया भर के तर्क वितर्क करते हैं। भले वो सुनने वाले पढ़ने वालों को सबको समझ में ना आते हों, लेकिन फिर भी आचार्य महाराज अपना काम पूरा करते हैं कि सूत्र एकदम निर्दोष और अखंड है, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं चलेगी। औपशमिको द्विभेद, अब सीधा सीधा सरल अर्थ ये निकलेगा कि औपशमिक भाव के दो भेद हैं, क्षायिको नव भेद, क्षायिक भाव के नौ भेद हैं, मिश्रोष्टादश भेद, मिश्र भाव के अठारह भेद हैं, औदयिक एक विंशति भेद, औदयिक भाव के इक्कीस भेद हैं, पारिणामिक त्रिभेद इति, और पारिणामिक भाव तीन भेदों वाला है। इस प्रकार यद्येवम औपशमिकस्य कौ द्वौ भेदौ इति अत आह, अब यदि ऐसी बात है तो औपशमिक के कौन से दो भेद हैं, ऐसी शंका उठेगी। इसलिए यहाँ से एक दूसरा तीसरा सूत्र कह रहे हैं, सम्यक्त्व चारित्रे, दो भेद औपशमिक भाव के सम्यक्त्व और चारित्र हैं। व्याख्यात लक्षणे सम्यक्त्व चारित्रे, सम्यक्त्व और चारित्र के लक्षण व्याख्यान में आ चुके हैं, पहले बतलाए जा चुके हैं। औपशमिकत्व कथमिति चेद उच्यते, औपशमिकपना कैसे बनता है सम्यक्त्व और चारित्र में, तो ये कहा जाता है चारित्र मोहो द्विविधः, चारित्र मोह दो प्रकार का है, कषाय वेदनीयो नो कषाय वेदनीयश्चेति, कषाय और नो कषाय, कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय, इस प्रकार दो प्रकार के भेद होते हैं चारित्र मोह के। तत्र कषाय वेदनीयस्य भेद अनंतानुबंधिनः क्रोधमान माया लोभाश्चत्वारः, उनमें कषाय वेदनीय के भेद अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ ये चार है। दर्शन मोह से त्रयो भेदा, और दर्शन मोह के तीन भेद हैं, सम्यक्त्व मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व इति, सम्यक्त प्रकृति नाम की कर्म प्रकृति दर्शन मोह का एक भेद है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ऐसे तीन कर्म की प्रकृतियां हो गई। आसान सत्तानाम प्रकृतिनाम उपशमाद औपशमिकम क्षम सम्यक्त, इन सात प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त होता है, जैसे धूल के बैठने से पानी स्वच्छ होता है, तो उसी प्रकार इन सात कर्मों के उदय के शांत होने पर जो सम्यक दर्शन होता है उसका नाम औपशमिक, क्योंकि शांत होने का मतलब उपशम है, और फिर जो सम्यक हो रहा है वो उपशमे भव औपशमिक, उपशम में होने वाला जो सम्यक दर्शन है वो औपशमिक है। अनादि मिथ्या दृष्टिर भव्यस्य कर्मोदयापादित कालुष्ये सति कुतस्तद उपशम, शंकाकार कहता है कि अनादि मिथ्या दृष्टि जो भव्य जीव है वो कर्म के उदय से कलुषता को प्राप्त है, यानी उसके अंदर वो विशुद्धि है नहीं, निर्मलता नहीं है, तो फिर कुतस्तद उपशम, फिर सात प्रकृतियों का उपशम कहां से हो जाएगा। तब आचार्य कहते काल लब्ध्यादि निमित्तत्वात्, काल लब्धि आदि के निमित्त होने से, काल लब्धि आदि का निमित्त होने से उन सात प्रकृतियों का, सात कर्मों का उपशम हो जाता है। सात कौन से, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, ये तत्र काल लब्धि स्थावत। ये मजेदार बात है कि काल लब्धि क्या चीज है, तो कहते हैं कर्माविष्ट आत्मा भव्य है, कालेर्ध पुद्गल परिवर्तनाख्ये विशिष्टे प्रथम सम्यक्त्व ग्रहणस्य योग्यो भवति नादिके इति, कर्मों से घिरा हुआ जो आत्मा है, भव्य जीव है, वो अर्ध पुद्गल का परिवर्तन काल अवशिष्ट रहने पर, बचा रहने पर प्रथम सम्यक्त्व ग्रहणस्य योग्य, पहली बार सम्यक्त्व ग्रहण करने के योग्य बन जाता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल अवशिष्ट रहने पर न अधिक है, ज्यादा काल बचा हो संसार भ्रमण का, तो फिर वो सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य नहीं होता। इसमें एक विद्वान रतनचंद मुख्तार जी हुए हैं, उनका कहना यह है कि यहां पर संसार का काल अर्धपुद्गल परिवर्तन बचा है, ऐसा कैसे निकलेगा अर्थ, शंका समझना इसको, कि संसार का काल आधा पुद्गल परिवर्तन बचा हो तब प्रथम सम्यक के योग्य होता है ये अर्थ नहीं निकलता, बल्कि पुद्गल परिवर्तन करता ही रहता है जीव हमेशा। तो किसी भी पुद्गल परिवर्तन का जब आधा भाग व्यतीत हो जाता है तब वो प्रथम सम्यक के योग्य होता है। लेकिन बात यह है, क्या कैसा, हाँ क्या, अभी कॉमा लगा है, पूर्ण विराम लगने के बाद प्रश्न करना अभी फुल स्टॉप नहीं लगाया हमने। क्या है, यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि कर्मों से घिरा हुआ जो भव्य आत्मा है, कोई भी संसारी प्राणी कर्मों से घिरा हुआ है, वो कालेर्ध पुद्गल परिवर्तन आखे विशिष्ट, अर्ध पुद्गल परिवर्तन नाम का जो काल होता है, एक काल है अर्ध पुद्गल परिवर्तन, उतना काल अवशिष्ट रहने पर, बचने पर। अब ये बचने पर किसमें से बचने पर ये शंका है। तो उन विद्वान का कहना यह है कि पुद्गल परिवर्तन जीव करता ही रहता, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कर चुका है, तो असंख्यात पुद्गल पर तो परिवर्तनों में, जैसे अभी कोई, अभी जो पुद्गल परिवर्तन अपना चल रहा है वो अगर आधा हो जाए कंप्लीट, तो फिर वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने योग्य बन जाता है, न अधिक है, अधिक अगर बचा हो तो नहीं होगा योग्य। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि अनादिकाल से जीव भटक रहा है। अब अनादिकाल से जीव भटक रहा है तो फिर पुद्गल परिवर्तन की शुरुआत कहां से मानोगे, शंका समझ में आ रही है, कहां से शुरू करोगे पुद्गल परिवर्तन। अभी यहां कोई ऐसा पॉइंट लगा है क्या इतिहास में कि यहां से तुम्हारा चालू हो गया और अब ये आधा हो गया और अब यहां से सम्यक दर्शन प्राप्त करने की तुम्हें योग्यता मिलती है, बोले तुम्हें छूट है, अब तुम प्राप्त कर सकते सम्यक दर्शन, ऐसा कोई है क्या? नहीं। तो अवशिष्ट का मतलब यह है कि वो जब संसार में अधिक से अधिक इतने समय तक रहे, ऐसी स्थिति बनती है उसकी। अब ये क्या है कि अपने ज्ञान का विषय नहीं है, वो तो भगवान जानते हैं कि कौन कब जाने वाला है, इस जन्म से नहीं, संसार भ्रमण से कब पार हो जाने वाला है। तो फिर जब अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल बचेगा तब वो पहली बार सम्यक ग्रहण करने के योग्य होगा, कर ही लेगा ऐसा नहीं है, योग्य होगा। इयम एका काल लब्धि, ये तो एक प्रकार की काल लब्धि हो गई कि इतना काल अगर बचा हो तो फिर वो पहली बार सम्यक प्राप्त करने के योग्य होता है। अपरा कर्म स्थिति का काल लब्धि, और दूसरी काल लब्धि किसको कहोगे, कि कर्मों की स्थितियां कुछ ऐसी विचित्र बन जाए कि उस काल में सम्यक प्राप्त हो सकता है, वो कैसी है? तो उत्कृष्ट स्थिति की शुकर्मसु, अधिक से अधिक स्थिति वाले कर्मों की सत्ता हो, अगर अपने आत्मा में बंधे हुए हो अधिक से अधिक स्थिति वाले कर्म, जैसे मिथ्यात्व 70 कोड़ा कोड़ी सागर, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी और अंतराय 30 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम और गोत्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसी उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्म पड़े हों अपनी आत्मा में तो फिर। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, जघन्य स्थिति की शुच्च, और एकदम जघन्य स्थिति वाले कर्म हो तो भी प्रथम सम्यक लाभ हो न भवती, जो प्रथम सम्यक है उसका लाभ नहीं होता। क्वतर ही भवती, फिर कब होता है बोले, तो आचार्य कहते हैं अंत कोटा कोटि कोटि, अंत कोटि कोटि सावग्रोपम स्थिति केशु कर्मसु बंधम आपद्य मानेशु, बंधने वाले कर्मों की स्थिति। अभी सत्ता की बात नहीं कर रहे हैं, पहले क्या कहा था कि इतने कर्म हो जिसकी सत्ता में, अब क्या कह रहे हैं कि नए बंधने वाले कर्म अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति वाले हों, और विशुद्धि परिणाम वशात, और विशुद्धि के परिणाम, विशुद्धि परिणाम के प्रभाव से, विशुद्धि परिणाम किसको कहते हैं, जिन भावों से साता वेदनी आदि पुण्य का बंध होता है उन भावों को विशुद्ध परिणाम कहते हैं। तो विशुद्ध परिणाम वशात,